स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 21 अप्रैल और दिन गुरुवार। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण में 62 सीटों के लिए आज डाले जाएंगे वोट। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने हंदवाड़ा मामले की न्यायिक जांच के लिए जारी किया नोटिस।
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अभी पिटीशन की है तो उसमें उनने इंक्वायरी बोला है कि इंक्वायरी कर लें जी, जो वहाँ क्लीन हो गई और डीबी ने उसको नोटिस इशू की है और 26 तारीख रखी है डेट।
सऊदी अरब पहुंचे ओबामा, आज शामिल होंगे गल्फ अरब समिट में। बुंदेलखंड में सूखे की मार झेल रहे लोगों पर एक खास रिपोर्ट।
जो बहुएं बेटी हैं भरने जा रही, अभी एक बहू तो हमारा पांव फ्रैक्चर होगा, घड़ा भी फूट गए, अभी भी प्लास्टर बंद है, कोई कहीं से बाल्टी से ला रहा है, कोई डब्बा से ला रहा है।
लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अजय शर्मा से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें करीब 1,37,00,000 मतदाता 62 सीटों पर खड़े 418 उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। इन उम्मीदवारों में 61 करोड़पति हैं, 80 के खिलाफ आपराधिक केस हैं और 65 हत्या और बलात्कार से जुड़े गंभीर अपराधों के केस झेल रहे हैं। तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में वोटिंग हो रही है। नॉर्वे की एक अदालत ने जनसंहार के दोषी एंडर्स ब्रेविक का वो दावा मान लिया है जिसमें ब्रेविक ने खुद के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं। 21 साल की सजा काट रहे ब्रेविक ने 2011 में गोलीबारी करके 77 लोगों की जान ले ली थी। ब्रेविक का दावा है कि उन्हें 5 साल तक अकेले कैद में रखा गया, जो उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। एक सरकारी वकील मारियस एम्बरलैंड ने इस फैसले पर ताज्जुब जताया है। जाहिर है कि हमने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि हम इससे सहमत नहीं हैं। अगर हम इससे सहमत होते तो हमने वो नहीं कहा होता जो अदालत में कहा। हमारा मानना है कि ब्रेविक को अलग रखने की पूरी वजह थी। ये थे नॉर्वे के जनसंहार मामले में सरकारी वकील मारियस एम्बरलैंड। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2 अरब डॉलर की जब्त शुदा ईरानी संपत्ति तेहरान समर्थक गुटों के हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को दे दी जाए। ये फैसला 1983 में बेरूत में अमरीकी मरीन बैरिकों पर हिजबुल्ला की बमबारी से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र ने सीरियाई शहरों में फंसे सैकड़ों जख्मी और बीमार लोगों और उनके परिवारों को बाहर निकालने का काम शुरू किया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के मुताबिक इनमें से कुछ की जान तुरंत बचाए जाने की ज़रूरत है। यमन में संघर्ष विराम के लिए आज कुवैत में शांति वार्ता शुरू हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हो रही ये बातचीत सोमवार से शुरू होनी थी, पर तब हूथी विद्रोही इसमें शामिल नहीं हुए थे। ये विद्रोही संघर्ष विराम के उल्लंघन का दावा कर रहे थे। सरकार ने भी विद्रोहियों पर संघर्ष विराम तोड़ने के इल्ज़ाम लगाए थे। यमन में चल रहे संघर्ष में 6,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 5,00,000 लोग विस्थापित हैं। रूस ने विश्व एथलेटिक संगठन को मनाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं ताकि उसके एथलीट इस साल होने वाले रियो ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकें। इन कदमों में खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के लिए 3 निष्पक्ष एंटी डोपिंग टेस्ट कराना शामिल है। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति लुई इनेशियो लूला द सिल्वा को चीफ एडवाइज़र बनाए जाने के मामले में अपना फैसला टाल दिया है। सिल्वा को मौजूदा राष्ट्रपति जिल्मा रूसेफ ने चीफ एडवाइज़र तैनात किया था। कोर्ट को देखना है कि क्या सिल्वा को ये पद भ्रष्टाचार के मामले में उनकी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए दिया गया था। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अप्रैल की 21 तारीख और दिन गुरुवार। कार्यक्रम की शुरुआत पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 62 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस दौर में किन सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और किन प्रमुख उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य वोटिंग मशीन में आज बंद हो जाएगा, इन तमाम सवालों को जानने के लिए सीधे चलते हैं कोलकाता, जहां बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अमिताभ, बताएं आज कौन कौन प्रमुख उम्मीदवार हैं?
देखिए, आज कम से कम 7 मंत्री, कई पूर्व मंत्री, सांसद और पार्टी की राज्य अध्यक्ष आज चुनावी मैदान में खड़े हैं। कोलकाता से ही 2 मंत्री शशि पांजा और साधन पांडे के इलाके में आज मतदान हो रहा है और चौरंगी इलाके से पूर्व तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभी जो कांग्रेस के उम्मीदवार है सोमेन मित्रा चुनावी मैदान में है। बीजेपी की पूर्व राज्य अध्यक्ष राहुल सिन्हा का इलाके में भी आज चुनाव हो रहा है, जोरा साको में, जहां कुछ हफ्तों पहले एक पुल टूट चुकी थी, कई लोगों का मौत हुआ था, उस इलाके से राहुल सिन्हा है। और इसके अलावा बर्दवान और नदिया जिलों से स्वपन देवनाथ, मौलय घटक, उज्जवल विश्वास जैसे मंत्री के इलाके में भी आज मतदान होने जा रहा है
जी। और सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं
जी? ये इस आज की जो चुनाव है इसमें सुरक्षा का जो पुख्ता इंतजाम किया गया चुनाव आयोग द्वारा, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। करीब 75,000 केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान और 25,000 राज्य पुलिस आज सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है जो चुनाव आयोग से हमको दिया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि राज्य पुलिस की जो कर्मी होंगे वो सिर्फ जो बूथ के बाहर जो लाइन है वो संभालने के लिए होंगे, सुरक्षा का पूरे सारे इंतजाम तो केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पास ही रहेगा। और आज 3,401 इलाके को सेंसिटिव चिन्हित किया गया है, और वेबकास्टिंग से लेकर के मोबाइल रिकॉर्डिंग और माइक्रो ऑब्जर्वर, ये बाकी सब चीजें तो जो है वो तो रहेगा ही।
बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका। और मेरा ख्याल है अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे के आसपास चुनाव शुरू हो जाएंगे, वोट डालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो आप इस पर नज़र बनाए रखिए और हम आपके पास अगले कार्यक्रम में भी ज़रूर आएंगे। ये थे कोलकाता से बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टा साली। और अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट ने हंदवाड़ा मामले की न्यायिक जांच कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक नोटिस जारी किया है और उनसे 6 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। सुनिए श्रीनगर से माजिद जहांगीर की ये रिपोर्ट।
भारत प्रशासित कश्मीर में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से हिंदवाड़ा में सेना की फायरिंग में हुई हलाकतों और लड़की के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में आला सतही न्यायिक जांच कराने के लिए नोटिस जारी किया है और सरकार से 6 दिनों के भीतर जवाब तलब किया गया है। बुधवार को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केस की सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी करते हुए केस की अगली सुनवाई यानी 26 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। परिजनों के वकील परवेज इमरोज कहते हैं कि केस की सुनवाई के दौरान सरकार को नोटिस जारी करने के अलावा पुलिस से कहा गया है कि वो वकील को लड़की और उसके पिता से मुलाकात को मुमकिन बनाए। उन्होंने कहा,
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अभी पिटीशन की है तो उसमें उनने इंक्वायरी बोला है कि इंक्वायरी कर लें जितनी वहाँ क्लीनिंग हो गई और इस लड़की के जो है वीडियो का, तो डीबी ने उसको नोट्स इशू की है और 26 तारीख रखी है डेट, तो इस पिटीशन को उन्होंने भी रखा, उसके साथ क्लब किया है। लेकिन जो ऑर्डर कोर्ट ने किया अभी तक तो उनने वकील को मिलने नहीं दिया था उनको, तो जो SP को डायरेक्शन हुई कि वो जी वकील को मिलने दे उससे, वकील को और माँ को लड़की के साथ, क्योंकि लड़की को रखा है फॉर फ्लंग एरिया में, 5 किलोमीटर दूर है सचिवडारा से जहाँ पे किसको रखा है, और उसको पूरा इन कुबन कड़ों में किससे मिलने नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। तो एटलीस्ट एक रिलीफ आज ये हुआ कि वकील जो है वो और उसकी माँ जो है वो उसे मिल सकती है।
कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 14 अप्रैल को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए मामले की आला सतही न्यायिक जाँच की मांग की थी। इस मामले में लड़की ने अभी तक 2 बयान दिए हैं जिनमें उसने सैनिक की छेड़छाड़ से इनकार किया है। यह पूरी घटना 12 अप्रैल की है जब श्रीनगर से 70 किलोमीटर दूर हिंदवाड़ा कस्बे में उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी जब कुछ स्थानीय लोगों ने सेना के एक जवान पर लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पूरे इलाके में हिंसक प्रदर्शन हुए थे और सेना की फायरिंग में 3 नौजवान मारे गए थे। कुपवाड़ा के लंगेट में भी एक महिला की गोली लगने से मौत हुई थी, जबकि कुपवाड़ा में एक युवक की टायर गैस शेल लगने से मौत हुई थी, जिसके बाद पूरी कश्मीर घाटी 4 दिन तक बंद रही है और कई जगहों पर कर्फ्यू लगाया गया था। माजिद जहांगीर, BBC हिंदी, श्रीनगर।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
एक दफा फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में। और अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सऊदी अरब का दौरा कर रहे अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज राजधानी रियाद में गल्फ अरब समिट में शामिल होंगे। ओबामा के सऊदी अरब दौरे को किस तरह से देखा जाए, अमरीका क्या चाहता है और सऊदी अरब क्या चाहता है, इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने अमरीका की डेलवेयर यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर मुख्तदर खान से बात की।
दो तीन चीजें हो रही हैं अमरीका और सऊदी रिलेशंस, इसे समझने के लिए हमको ये जरूर याद रखना होगा कि जो अमेरिका की हिस्टोरिकल मिडिल ईस्ट में पॉलिसी रही है, उस इलाके में शुरू में चार मेजर एलाइज हुआ करते थे, यानी इजराइल, तुर्की जो नेटो के मेंबर है, ईरान और इजिप्ट, और सऊदी अरेबिया के साथ हमेशा से तेल के साथ ताल्लुक थे। लेकिन जब ईरान का रेवोल्यूशन आया और ईरान अमेरिका के काफी खराब हो गया और मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इस्लाम के वजह से, यानी इख्वान अल मुस्लिमीन जो एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, उनके वजह से जब वहाँ पे पॉलिटिक्स में थोड़ी टेंशन आने लगी, तो अमेरिका ने खास तौर पर सऊदी अरब और इजिप्ट को अपने दो पिलर बना लिए ताकि मिडिल ईस्ट में मॉडरेशन रहे। अमेरिका के लिए सऊदी अरब और इजिप्ट हमेशा से ही जो कहिए कि एजेंट रहे हैं मिडिल ईस्ट में, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को वो दूसरे मुल्कों को अग्री करवाते थे। तो अमेरिका के लिए अभी भी सऊदी अरब इम्पोर्टेंट है, उसकी इकोनॉमी, उसकी तेल, उसकी इन्वेस्टमेंट्स, और सऊदी अरब क्योंकि वहाँ पर मक्का और मदीना है और दूसरे इस्लामिक मुल्क, सऊदी अरब से पैसे भी लेते हैं और सऊदी अरब की थोड़ी बहुत सुन भी लेते हैं, इसलिए अमेरिका के लिए सऊदी अरब बहुत अहम है। लेकिन जब से ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई है उसकी वजह से अमेरिका के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ थोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं।
प्रोफेसर साहब, ये तो अमेरिका की तरफ से बात हुई, सऊदी अरब अमेरिका से क्या चाह रहा होगा, चार पांच बड़ी बातें आपको क्या लगती हैं?
एक तो एक सऊदी अरब को साफ अब अंदाजा लग गया है कि अमेरिका के लिए सऊदी अरब बोझ बन गया है। अब अमेरिका में ये एहसास हो रहा है कि सऊदी अरेबिया एक लायबिलिटी बन गया है थियोलॉजिकली, क्योंकि आईसिस की जो थियोलॉजी है वो आइडेंटिकल है सऊदी अरेबिया की। अगर आईसिस एक मुल्क बन जाता है इवेंचुअली तो वो इट विल बी एग्जैक्टली लाइक सऊदी अरेबिया। सो इसलिए भी सऊदी अरब रियलाइज कर रहा है कि अब अमेरिका पे वो रिलाई नहीं कर सकता। दूसरी चीज, सऊदी अरेबिया इस बात से परेशान है कि उसके जो ट्रेडिशनल एलाइज थे वो कमजोर हो गए, मिसाल के तौर पे इजिप्ट। इजिप्ट हमेशा से सऊदी अरेबिया का काफी क्लोज पार्टनर रहा है और वो बहुत कमजोर हो गया है। तीसरी चीज ये है कि सऊदी अरब अब रियलाइज कर रहा है क्योंकि वो अमरीका पे लड़ाई नहीं कर सकता, ईरान मजबूत होते जा रहा है, वो इसराइल के साथ ताल्लुक बढ़ाना शुरू कर दिया, विच इज इंटरेस्टिंग इन द सेंस कि इसराइल खुद अमेरिका का बहुत बड़ा एलाई है।
खाड़ी क्षेत्र में और भी देश हैं सऊदी अरब के अलावा, वो ओबामा की इस यात्रा को, इस मेल मुलाकात को किस नजरिए से देख रहे होंगे?
अमेरिका इज एसेंशियल ये सारे मुल्कों की सिक्योरिटी के लिए, तो वो बेसिकली वही चीजें करेंगे जो अमेरिका चाहता है, एक्सेप्ट दुबई जो बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा है जब से यूनाइटेड वो मुस्लिम ब्रदरहुड से बहुत डरता है और समझता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप रेवोल्यूशन आएगा। लेकिन जहां तक उनकी सिक्योरिटी है वो सारे के सारे मुल्क अमेरिका पे डिपेंड करते हैं।
ये थे प्रोफेसर मुख्तदर खान, अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का सऊदी दौरा। और अब चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना का कहना है कि पंजाब प्रांत के दक्षिण क्षेत्रों में सक्रिय अपराधी गिरोह के सरगना गुलाम रसूल उर्फ छोटू ने अपने 12 साथियों के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया है और अगवा किए गए 24 पुलिस वालों को भी छुड़ा लिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये छोटू हैं कौन और इतनी ताकत उन्होंने कहाँ से जुटा ली? इन सवालों के जवाब को तलाशने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने पाकिस्तानी अखबार जंग के मुल्तान संवाददाता जफर अहिर से बात की, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले गुलाम रसूल का उनके ठिकाने पर जाकर इंटरव्यू किया था।
गुलाम रसूल और छोटू जिससे मैं मिला 2006 में, उसने मुझे बताया था कि इस वजह से वो जराइम की दुनिया में आया। जब छोटा था उस वक्त 13 साल का था, तो उसकी जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर लिए और फिर उसके साथ लोग मिलते गए और लोगों ने उसको यूज किया और उसका नाम बन गया।
इतना बड़ा गिरोह और इतना असला उन्होंने कैसे हासिल किया, कुछ बता पाएंगे इस बारे में?
ये उसके बाद अफगानिस्तान के रास्ते असला आता रहा। اسے مجھے خود بتایا تھا. میں نے اس سے یہ بات پوچھی تھی کہ تمہارے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آیا, تو اس نے کہا جی میرے پاس, بلکہ میں نے اس سے سوال کیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس انڈین اسلحہ ہے. اس نے کہا جی میں نے انڈیا سے سن لیا, لیکن مجھے جتنا بھی اسلحہ آتا ہے افغانستان کے راستے آتا ہے.
ظفر صاحب یہ بھی بتائیں کہ جو سندھ ندی پر جو ٹاپو بنا ہوا ہے جہاں پر چھوٹو گینگ نے اپنا اڈا بنایا ہوا ہے, وہ کس طرح کی جگہ ہے, کس وجہ سے وہ وہاں پر آسانی سے اپنا اڈا بنا پایا؟
اس میں ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ وہ کوئی ایک جگہ پہ پراپر نہیں رہتے. جب دریا میں پانی زیادہ آتا ہے تو یہ جہاں جو خشک جگہ ہوتی ہے یہ بھی دریا کے اندر آ جاتی ہے, تو پھر اپنا ٹھکانا بدل لیتے ہیں. وہ پھر دور کے جنگلوں میں, دریا سندھ کے جنگلات میں چلے جاتے تھے. جب دریا میں پانی کم ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ ایسی جزیرہ نما جگہ ایسی ہوتی ہیں بڑی بڑی کہ جہاں سے پانی اتر جاتا ہے تو وہ جگہ خشک ہو جاتی ہے, تو یہ لوگ پھر وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر درختوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, چھپنے کی جگہ بھی ہوتی ہے, جنگل بیلا ہوتا ہے, تو ان کے لیے وہ ایک محفوظ ٹھکانا بن جاتا ہے.
ایک آدمی اپنے پیر جماتے جاتا ہے بہت مضبوطی سے, کیسے, کیا وجہ ہوئی, کیا اس دوران پاکستان کی پولیس, سینا, پرشاسن سب ایک طرح سے لاچار رہا, پنگو رہا, جس کی وجہ سے ایک آدمی اتنا مضبوط ہوتا چلا گیا؟
اس میں فوج کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا, کیونکہ پولیس ہی اس کو سارا دیکھتی ہے. تو جنگل بہت زیادہ ہے, تو یہ کبھی جب اس پہ کوئی اٹیک ہوتا تو پھر یہ کبھی افغانستان چلا جاتا, وہاں چھپ جاتا, کبھی جنگلوں میں چلا جاتا. کاروائی ہوتی رہی, لیکن اس کا نصیب اچھا تھا کہ یہ ان کے ہاتھ نہیں لگا, اور اب جب فوج نے مداخلت کی اور بھرپور قسم کاروائی ہوئی پکڑا. میری اس سے بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا جی اس ملک کی فوج بھی پاک ہے اور فوج میری ماں کی طرح ہے, میں فوج سے نہ لڑوں گا نہ گولی چلاؤں گا, میں فوج کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوں.
تو پاکستان میں چھوٹو گینگ کا آتم سمرپن, اور اب بات ان خبروں کی جن پر رہ گیا آج ہماری نظر.
گجرات سرکار کو آج راجیہ میں سوکھے کے حالات پر سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ اور حلف نامہ پیش کرنا ہے. سپریم کورٹ نے گجرات سرکار کو جھڑکتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سوکھے کے معاملے کو گمبھیرتا سے لے. اس کے بعد راجیہ سرکار نے سوراشٹر اور کچھ علاقے کے 468 گاؤں کو آنشک طور پر سوکھا پربھاوت گھوشت کیا ہے. بینکوں کا 9,000 کروڑ روپے کا قرض نہ چکا سکے ادیوگپتی وجے مالیا کو آج سپریم کورٹ میں اپنے اور اپنے پریوار کی سمپتیاں اجاگر کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں. کورٹ نے یہ بھی جاننا چاہا ہے کہ مالیا کب تک عدالت میں پیش ہوں گے. عدالت کا کہنا تھا کہ مالیا ثابت کریں کہ وہ اپنا قرض چکانے کے لیے گمبھیر ہیں. اس معاملے کی اگلی سنوائی 26 اپریل کو ہوگی. ابھینیتری ہیما مالنی اور مہاراشٹر کے راجسو منتری ایک ناتھ کھڑسے کے خلاف دھوکہ دڑی کا کیس درج کرانے کی مانگ کرنے والی جنہت یاچکا پر آج بامبے ہائی کورٹ میں سنوائی ہو سکتی ہے. کھڑسے پر ہیما مالنی کو ان کی ڈانس اکیڈمی کے لیے بے حد کم قیمتوں پر زمین آونٹت کرنے کے آروپ ہیں. بی ایس پی سے راجیہ سبھا سانسد نریندر کشیپ کی ضمانت پر آج غازی آباد کی سی بی آئی کورٹ میں سنوائی ہو سکتی ہے. سوموار کو یہ سنوائی استھگت کر دی گئی تھی. کشیپ, ان کی پتنی اور بیٹے ڈاسنا جیل میں نیائک حراست میں ہیں. ان کے خلاف دہیج ہتیا کے آروپ ہیں. نئے آنٹرپرینور اور کاروباریوں کی مدد کے لیے بھارت سرکار آج سے ٹویٹر سیوا شروع کر رہی ہے. اس کے ذریعے اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے سوالوں کا نشچت سمے سیما میں سمادھان کیا جائے گا. وانجیہ اور ادیوگ منتری نرملا سیتارمن نے یہ جانکاری دی. راشٹریہ مانوادھیکار آیوگ کے چیئرمین جسٹس ایچ ایل دتو کے نیتتو میں آج سے ایک ٹیم پٹنہ میں 3 دن کی کھلی سنوائی کا آیوجن کر رہی ہے. اس کا مقصد بہار کے لمبت مانوادھیکار معاملوں کا نپٹارا کرنا ہے. بلغاریا, البانیا اور میسیڈونیا کے ودیش منتریوں کی آج گریس کے شہر تھیسالونیکی میں بیٹھک ہو رہی ہے. بلغاریا کی اور سے کہا گیا ہے کہ یہ بیٹھک گریس کے ودیش منتری نکوس کوزیاس کی کوششوں سے ہو رہی ہے تاکہ یہ دیش شرناتھی سنکٹ کے علاوہ دوسرے مدوں پر سہیوگ بڑھا سکیں. برٹین کی مہارانی ایلیزابیتھ دویتیہ آج اپنا 90واں جنم دن منا رہی ہیں. اس موقع پر مہارانی ونسر کے کاسل ہل میں 4 میل کی کوئنس واک وے کی یاد میں ایک اسمرتی چنھ کا ادگھاٹن کریں گی. مہارانی اور ایڈنبرا کے ڈیوک لوگوں کا ابھیوادن سویکار کریں گے.
اور اب بی بی سی ہندی کی وشیش پیشکش سوکھا بھارت.
ایک طرف آئی پی ایل میچوں کے لیے پانی سے تربتر میدان, دوسری طرف پانی کے لیے ترستے گاؤں دیہات.
کہاں آوت ہے پانی, مرتی ہیں گورو بچیرو مڑائی سب کو بھائی ہرا کہے کا.
سوکھی زمین, پتھرائی آنکھوں میں بچوں کے بکھرتے سپنے.
ہمارے سب سے بچے جاتے ہوں گے اسکول بہت کم جاتے ہیں اور زیادہ پانی میں, اور گھر کے کام دکھ رہے ہیں کیونکہ نہیں آپ چلے گا دلّی, کیونکہ یہاں کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں, سرکار کچھ کر نہیں رہی ہے مدد.
پانی نہیں بچا, بچے رہے تجربے.
پہلے جو ہے تو لوگ پانی کا رکھ رکھاؤ کرتے تھے, بندیاں ڈالتے تھے, अब आज बरसाती पानी कोई रोक नहीं पा रहा
और अब चारों तरफ सूखा ही सूखा।
आसों की साल में कई आदमी ने बलकट के लाने खेती लई और भाव ना कुछ तो सवेरे से चिल्लाता कही कि हम तो आत्महत्या कर ले।
सूखा भारत शाम 7:30 बजे दिन भर में, पुनः प्रसारण अगली सुबह 6:30 बजे। नमस्कार भारत में, सूखा भारत।
बुंदेलखंड आज भले ही जल संकट से जूझ रहा हो लेकिन इसका इतिहास ऐसा नहीं रहा है। हालांकि प्राकृतिक तौर पर पानी की समस्या जरूर रही होगी लेकिन पुरखों ने जिस तरह से पानी का रखरखाव किया उससे ऐसा संकट सामने नहीं आ पाया। पूरे बुंदेलखंड में जगह जगह छोटे तालाबों कुओं के अलावा बड़े बड़े सरोवर तक देखे जा सकते हैं लेकिन आज ये सूखे पड़े हैं। स्थानीय लोगों और जानकारों का कहना है कि जल संकट की वजह से ये तालाब सूख गए हैं क्योंकि इससे जलस्तर भी नीचे चला गया है। सूखा भारत की तीसरी कड़ी में समीर आत्मज मिश्र पानी के इन्हीं स्रोतों की चर्चा कर रहे हैं।
झांसी जिले के मौरानीपुर से टीकमगढ़ जाने के रास्ते में हमें एक नदी दिखी।
बाबा जी है नदी है नाला है ये जो पुलिया बनी हुई है।
ये नदी है और इसका नाम है बुंदेली में गड़बोरू। यहाँ से इस धार कोई पार नहीं कर पाता, इसको इतनी तेज खर धार जाती है उसकी, पैदल चल के पार नहीं कर पाता, बहुत तेज धार चलती है उसकी।
और अब पानी की एक
बूंद, पानी की तो बूंद नहीं है 2 साल से उसमें।
ये बताएंगे आप यहीं के रहने वाले?
हम तो यहीं के रहने वाले।
तो क्या इसकी जो बाबा जी बता रहे हैं आप थोड़ा बताइए, आपको ज्यादा जानकारी होगी इस नदी के बारे में।
नदी की जानकारी जो बाबा जी बता रहे बात सत्य है लेकिन अब 2-3 साल से भी पानी नहीं है, इतना पानी कभी नहीं आया जितना पहले पानी। ये नदी कोरेचा बंदा के लिए जाती है मऊरानीपुर।
नदी किनारे मंदिर में रामायण पाठ चल रहा था और पास के एक हैंडपंप से पानी लेने के लिए कई लोग खड़े थे। ये हालत उस बुंदेलखंड की है जिसके हर इलाके में बड़े बड़े तालाब और जगह जगह कुएं दिखते थे। तालाब और कुएं आज भी हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है। यही वजह है कि लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है।
जो बहुएं बेटियां भरने जा रही, अभी एक बहू तो हमारा पांव फ्रैक्चर होगा, घड़ा भी फूट गए, अभी भी प्लास्टर बंद है। कोई कहीं से बाल्टी से ला रहा है, कोई डब्बा से ला रहा है, कोई कहीं से पायन पूरण।
नदियां तो प्रकृति ने दी हैं लेकिन तालाबों झीलों और सरोवरों का निर्माण समय समय पर यहां के स्थानीय राजाओं ने कराए हैं। सबसे ज्यादा सरोवर चंदेल राजाओं ने बनवाए जिनकी इंजीनियरिंग और जगह के चुनाव का लोग आज भी लोहा मानते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 3 बड़े सरोवर हैं। सामाजिक कार्यकर्ता सुदीप श्रीवास्तव हमें लोकपाल सरोवर ले गए। उन्होंने बताया कि इसकी बनावट ऐसी है कि पहाड़ से नीचे गिरने वाली पानी की एक बूंद बेकार नहीं जा सकती।
ये लगभग 150 एकड़ की जमीन पर बना है। आप देखें कि उनका साइट सिलेक्शन कितना बढ़िया था कि 3 तरफ से पहाड़ और 1 तरफ से बंधान, और उसमें एक बूंद भी अगर पहाड़ में पानी गिरता है तो वो पहाड़ों से होता हुआ ही तालाब में आता था। गंदगी नाम की एक चीज नहीं थी जो गंदगी आके उस तालाब में रह जाए। आजकल तो लोग बाग नाले के नाले सीधा पानी में और तालाबों में डाल देते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तालाब से ही नहर निकली हुई थी जिससे लोगों को और खेतों को पानी की आपूर्ति की जाती थी। नहर के अवशेष अब कहीं कहीं दिखते हैं और स्थानीय लोगों ने उसे पाट कर छोटे छोटे घर बना लिए हैं।
आज से 10-12-15 साल पहले तो हमने नहर देखी हमने ये, और अब करीब हो या करीब हमारी ख्याल में वही इसके पहले तो नहर बनी थी, उसमें पानी आनी भी आता था लेकिन अब तो नहर नहीं दिख रही, उसके ऊपर झुग्गी झोपड़ी बन गई हैं। अब तो नहर नाम मात्र के लिए दिख रही है वो तो यहाँ पर।
पन्ना के जिलाधिकारी शिव नारायण सिंह चौहान बताते हैं कि इन बड़े तालाबों से जिले के छोटे तालाबों को भी जरूरत पड़ने पर पानी की आपूर्ति की जाती थी। उनका कहना है कि तालाब को साफ करके और गहरा किया जा रहा है।
इस साल हमने प्लान किया है कि इसकी सफाई होगी, डिसिल्टिंग होगी, इसके साथ ही साथ इसका जो कैचमेंट एरिया है उस कैचमेंट एरिया में प्लांटेशन भी होगा। ये बात सही है कि इसमें कुछ एरिया में थोड़ा एंक्रोचमेंट है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जो एंक्रोचमेंट है उसको भी हम वहाँ से उसको रिमूव करेंगे।
यदि बात बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के जिलों की हो तो सरकारी आंकड़ों में भी बड़ी संख्या में तालाबों पर अवैध कब्जे किए गए हैं। बुंदेलखंड के जल संकट और सूखे के लिए लोग पुराने स्रोतों के सूखने और उनकी बदइंतजामी को ही दोषी बताते हैं। मनरेगा के तहत शुरू की गई खेत तालाब योजना को भी जानकार सही नहीं मानते। महोबा जिले के सामाजिक कार्यकर्ता पंकज सिंह परिहार कहते हैं कि इस योजना से तो धीरे धीरे खेत ही बंजर हो जाएंगे।
सिर्फ गड्ढे में भर पानी भरने से जो एक खाली जगह रहेगी उसका पानी का कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, ना ही उसमें पानी भरेगा। दूसरे मिट्टी का क्षरण होकर के जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो ऊपर की परत में होती है, क्षरण होकर के उस गड्ढे में जाएगी, तो इससे ये खेत तालाब योजना खेतों के लिए एकदम नुकसानदेह है।
पंकज कहते हैं कि अभी सरकारी पैसे से भले ही योजना सही लग रही हो, लेकिन आने वाले दिनों में जब खेतों में बने तालाब खेतों की ही मिट्टी से पट जाएंगे, तब न तालाब रहेंगे और न ही खेत अपनी स्थिति में रह पाएंगे।
ये थे समीर आत्मज मिश्र। अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, लेकिन आज हम चलेंगे इसके लिए देहरादून। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति शासन के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दो टूक शब्दों में कल कहा कि राष्ट्रपति भी गलती कर सकते हैं और उनके फैसले भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। पिछले महीने बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान अपनी टांग गंवाने वाले देहरादून पुलिस के घोड़े शक्तिमान ने कल दम तोड़ दिया। जाहिर है ये दो बहुत बड़ी खबर हैं, तो आखिर इनको वहां से छपने वाले अखबारों ने किस तरह से लिखा है, यही जानने के लिए चलते हैं देहरादून शिव जोशी के पास। जी शिव, बताएं कल के हाईकोर्ट के इस के बारे में वहां के अखबार क्या कहते हैं?
जी इकबाल, आज के जो अखबार हैं ये एक तरह से जैसा आपने बताया इन दोनों खबरों से पटे हुए हैं, न सिर्फ पहले पन्ने तक सीमित हैं बल्कि हर दूसरे तीसरे पन्ने पर इनसे जुड़ी खबरें प्रकाशित की गई हैं। और जो खास बात जो नजर आती है सारे अखबारों को देखने के दौरान वो ये है इकबाल की आज के जो अखबार हैं उनकी जो सुर्खियां हैं कम से कम बीजेपी के लिए बड़ी असहज करने वाली लग रही हैं, राजनीतिक तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी। वजह दो है, एक तो हाईकोर्ट ने जिस तरह से केंद्र सरकार को फटकारा है, अमर उजाला अखबार है जो अपनी टॉप न्यूज ये लगा रहा है कि राष्ट्रपति राजा नहीं उनके फैसलों की भी हो सकती है समीक्षा, हाईकोर्ट ने कहा है, वो लिखता है कि केंद्र की खिंचाई हाईकोर्ट ने की है, उसके मुताबिक जो अखबार में छपी है खबर कि क्या ऐसे काम करती है सरकार। और इस तरह से एक सिंगल कॉलम भी अमर उजाला ने लगाया है जिसमें कि हरीश रावत पर भी सवाल उठाए हैं कि क्या उनके खिलाफ भी क्या कोई जो उनकी हरकतें हैं उनको देखकर नहीं लगता कि कुछ इस बारे में होना चाहिए, हालांकि उसका जवाब भी अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया, ये खबर भी उन्होंने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण ने भी इसी तरह से शीर्षक लगाया है हाईकोर्ट को लेकर कि राजा नहीं है राष्ट्रपति
जी, और शक्तिमान के बारे में क्या कुछ लिखा अखबारों ने?
जी शक्तिमान पे ही मैं आ रहा था। जी शक्तिमान को लेकर भी अखबारों ने, अगर टॉप न्यूज इन अखबारों की हाईकोर्ट की है तो उसी तरह से सेकंड लीड या थर्ड लीड या फिर एंकर वो शक्तिमान को लेकर बनाया गया है। शक्तिमान को लेकर कुछ उनकी फाइल फोटोज जो शक्तिमान की लगाई गई है उसमें उसको एक बहुत ही जीवंत और चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद घोड़ा वो नजर आता है कि कैसा वो अपनी ड्यूटी के दौरान रहा होगा, क्योंकि दुनिया ने उसके बारे में तभी जाना जब वो घायल हो चुका था। शक्तिमान को इस तरह से खबरें लगाई गई हैं कि नहीं रहा शक्तिमान, राज के सम्मान के साथ अंतिम विदाई उसकी की जाएगी।
बहुत
हिंदी अखबारों ने बल्कि यहाँ से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी अखबारों ने भी इस बार इन दोनों खबरों को प्रमुखता से
जी। बहुत शुक्रिया शिव जोशी आपका देहरादून से अखबारों की समीक्षा के लिए। और जैसा कि शक्तिमान के बारे में शिव कह रहे थे तो सोशल मीडिया पर भी काफी प्रतिक्रिया आ रही हैं, और अजय इसके बारे में हमें और जानकारी देंगे।
जी सोशल मीडिया पर शक्तिमान को जैसे ट्विटर के ऊपर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ और आम लोगों ने श्रद्धांजलि दी है, और कुछ बहुत सारे लोगों ने भाजपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक तरीके से पेश किया है और ये कहा है, आरोप लगाया है कि घोड़े की मौत के जरिए भाजपा को का विरोध किया जा रहा है। दोनों तरह की बातें हैं। जैसे बॉलीवुड अभिनेता जो हैं ऋषि कपूर, उन्होंने लिखा है कि भाजपा विधायक गणेश जोशी और घोड़े की तस्वीर लगाते हुए ट्विटर पर लिखा कि क्या अगर भारत में ज़मीर बचा है तो इस शख्स पर कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे ये कोई भी गणेश जोशी हो, क्या बहरे राजनीतिक कान सुन रहे हैं, इस तरह से लाइन है उनकी।
और कोई प्रमुख प्रतिक्रिया किसी
जी की? एक राजीव शुक्ला हैं, उन्होंने लिखा है जानकर दुख हुआ कि शक्तिमान की मौत हो गई, अगर हम इंसान जानवरों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते तो इंसानियत और नैतिकता की किससे उम्मीद करेंगे।
बहुत शुक्रिया अजय आपका अखबार के समय इस खास जानकारी के लिए। और अब प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसमें करीब 1,37,00,000 मतदाता 62 सीटों पर खड़े 418 उम्मीदवारों के लिए मतदान करेंगे। नॉर्वे की एक अदालत ने जनसंहार के दोषी एंडर्स ब्रेविक का वो दावा मान लिया है जिसमें ब्रेविक ने खुद के साथ अमानवीय व्यवहार के आरोप लगाए हैं। अमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि $2 अरब की जब्त शुदा ईरानी संपत्ति तेहरान समर्थक गुटों के हमलों में मारे गए लोगों के परिवारों को दे दी जाए। संयुक्त राष्ट्र ने सीरियाई शहरों में फंसे सैकड़ों जख्मी और बीमार लोगों को उनके परिवारों सहित बाहर निकालने का अभियान शुरू किया है। यमन में संघर्ष विराम के लिए आज कुवैत में शांति वार्ता शुरू हो रही है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे विश्व भारती में। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।